الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى. قابل احترام دوستوں، مجلس کے بازار طالبات خواتین اسلام، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے اعمال کی درستی، اپنے اخلاق کی بہتری، ماحول کا سدھار، معاشرے کی پاکیزگی، معاملات کی صفائی، عقائد کی صحت، عبادات کی قبولیت، یہ سب چیزیں بنیادی طور پر ان چیزوں پر موقوف، بہت ہی اصولی بنیادی کلی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے. اگر آپ یاد رکھ سکتے ہوں ان شاء اللہ زندگی بھر کے لیے کام آ سکتے. ہر انسان میں اللہ پاک نے دو تقاضے رکھے، ایک تقاضا ہے فائدوں کے حاصل کرنے، دوسرا تقاضا ہے نقصانات سے بچنے. مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، اس میں دو تقاضے پائے جاتے. کسی میں نہیں ہے تو وہ بھی بول سکتے ہیں کہ مجھ میں نہیں پائے جاتے. اس سے علاحدہ بتا کے تھوڑی سی بات کی جا سکتی. یہ تقاضا ہے فوائد کے حاصل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں جلب منفعت. جو بڑے لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں تو یہ الفاظ یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور ایک تقاضا ہے نقصانات سے روکنے کا، اس کو کہتے ہیں دفع منفعت. یا کہتے ہیں طالبہ کہلے، اور بچوں کو بھی سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی مثال ان کے سامنے رکھیں. گلاب کا پھول ہاتھ میں لے کے ایسا ہوتا ہے، سامنے والا بچہ فوراً اس کی لینے کے لیے جلتے ہیں، کیونکہ اس کی عقل یہ کہہ رہی کہ یہ اچھی چیز ہے، خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، اسے محسوس ہوں گا، فوراً لینے کے لیے آگے بڑھتا. لیکن اگر کوئی نقصان والی چیز کو ذرا سا اس کی طرف ایسا کرے تو وہ ڈھکیل دے گا، دور بھاگ جائے گا. یہ دراصل اندرون میں پائی جانے والی اسی قوت اور تقاضے کا اثر، فائدہ حاصل کرنے کی یہ قوت اللہ نے انسان میں رکھی ہے، نقصان سے بچنے کی یہ قوت اللہ نے رکھی ہے. فائدہ حاصل کرنے کا ایک تقاضا اللہ نے انسان میں رکھا ہے، نقصان سے بچنے کا ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہے. وہ جو فائدہ حاصل کرنے والا تقاضا ہے اس کو قوت شہویہ بھی کہتے ہیں. عام طور پر لفظ شہویہ یا لفظ شہوت عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص قسم کی خواہش کا نام، حالانکہ ایسا نہیں. مطلب خواہش کو، چاہت کو کسی چیز کی بدلنے والا وہ لفظ. یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں کوئی حکیم ہوں گے تو وہ تائید کریں گے اس بات کی کہ صاحب یہ دوا کھائیے اس سے غذا کا اشتہا پیدا ہو، یعنی خواہش پیدا ہو. پتا نہیں کوئی یقین ہے کہ نہیں، وہ ایک لفظ ہے جو استعمال کرتے ہیں. اور جو لوگ اردو تعلیم اچھی جانتے ہیں اور ان کی زبان میں بھی شائستگی ہے، وہ لوگ بھی جب کہتے ہیں ذرا یہ لیجیے، ذرا یہ لیجیے، ذرا اشتہا نہیں ہے. اشتہا شہوت ہی تھے، تو اس کو مانا خواہش کیا آتے ہیں، چاہت کیا آتے ہیں. ایک قوت ہے قوت شہویہ، اس کا کام ہے فائدے والی چیز کی طرف ظاہر کرنا، اسے آگے کرنے کی کوشش، اس کی تدبیر سوچ. اور ایک ہے قوت غضبیہ، غصے والی، ناراضگی والی، ناپسندیدگی والی، تنقید والی، اس کا تقاضا نقصان سے سنے سے نکالے. جس کسی کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ میرے لیے ضرر پہنچانے والا ہے، تو اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اسے ہٹانے کی فکر کرے. یہ ایک مسلم بات ہے، اسلام کی حقیقت ہے کہ ہر آدمی میں بروزگار عالم میں دو چیزوں کی تقاضے رکھتے ہیں، منفعت کے حاصل کرنے کے مدد سے. اور اسی مقصد سے بروزگار عالم نے یہ قوت ہمارے اندرون میں رکھی، ہر انسان میں پائی جاتی. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صاحب اگر کوئی خاص چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں، دیکھنے کے اندر ایک تقاضا پیدا ہو، लेकिन अगर बारीक से बारीक भी तिनका तेजी से उड़ता हुआ आपकी आंख की तरफ आ रहा है तो आप फौरन अपनी आंख बंद कर लेंगे और कोई रुकावट कायम कर लेंगे, आंखों को फांक लेंगे, यही है जरूरत, जरूरत वाली चीज से बचने का जरूरत। अब उसके बाद पूरी दुनिया इसी तकाजे के मुताबिक जो अमल कर रही है उसमें वो एक बहुत बड़ी गलती का शिकार, वो ये है कि लोगों ने फायदे को और नुकसान को अपने तौर पर तय करने की गलती, कि ये फायदा है ये नुकसान, ये अच्छी है ये खराब। चुनाचे आज आप देखिए कि साहब आदमी की अकल एक चीज कहती है और कुरान और सुन्नत की तालीम उसके खिलाफ, तो फिर उसकी अकल नाकिस, अकल जब काम होती है तो फिर नहीं कहती, अकल जब पूरी हो जाती देती है तो फिर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही फैसला करती है। जैसे आप देखेंगे साहब इस वक्त में करोड़ों की तादाद में ऐसे अपराध मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि उनका सरमाया क्यों का क्यों महसूस रहे, आमदनी होती है 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, हर महीने में 50,000 रुपए मिल जाते, इसी 10 लाख का कर्ज दिया और इस शराब से दे दिया इसके ऊपर इतना सूद मिले, अब उसके 10 लाख 10 लाख ही रहते हैं, अभी 5 लाख खाया जाता है, 10 लाख खाया जाता है, 15 लाख खाया जाता है, और इसकी 10 लाख की भी फर्क नहीं पड़ा, हजारों लुट गए करोड़ों दबाव हो गए। अमल ये कहती है कि इसमें तो फायदा है, लेकिन शरीयत ये नहीं कहती, इस्लाम ये नहीं कहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हकुल्लाह रिबा, अल्लाह रिबा को मेटते हैं। अब जब अपने अमल से ये तय किया कि ये फायदे की चीज है तो अब उस फायदे को हासिल करने के लिए जो तदबीरें आदमी करने लगता है वो अख्तियार करने के लिए कुव्वत हज़बिया कुव्वत शहरिया काम करती, तो अब ये जो कुव्वत गलत सिमत पर चल रही है ये इस पहली गलती का नतीजा। बात जरा अच्छी तरह समझे, बच्चों को पता नहीं पूरी तरीके से समझ में आया कि ना है, लेकिन बड़े लोग समझना चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त में जहां जहां खिलाफ शरा आमाल सादिर हैं किसी भी सूरत में वो सब के सब इसी बुनियादी गलती का नतीजा है कि फायदे को नुकसान को उन्होंने अपने अकल से तय किया। पीछे से अहदेदार है, ऑफिसर है, इसकी जिम्मेदारी है आने वाले लोगों के अहवाल को जानना, उनकी फाइल को देखना, उसके इस्तेहकाक को समझना और फिर उसकी मंजूरी देना और उसके ऊपर दस्तखत करना, उसके जरिए से उसका बहुत बड़ा काम बन सकता है। अब उसकी ये जिम्मेदारी कि अगर वो मुकम्मल है और वाकईतन मुतालबा इसका हक बजाने में तो ऐसी सूरत में दस्तखत कर देना उसकी जिम्मेदारी, मगर वो क्या सोचता है कि मेरी दस्तखत से इसका 5 लाख का नफा हो रहा, तो ऐसी सूरत में अगर मैं ये कहूँ इस दरखास्त के साथ 50,000 का वेट भी हो आसानी से दे देंगे, तो उसके नतीजे में ये समझता है कि मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ, अपनी मुलाजमत भी कर रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ जो मेरे दफ्तर से मुतल्लिक है, उसी के साथ साथ ये जायद आमदनी भी रिश्वत की सूरत में आ रही है, तो अकल क्या कहती है तो फायदे की थी। लेकिन शरीयत क्या कहती है, शरीयत कहती है कि ये हराम है और जहन्नम में जाने का जरिया है, रिश्वत में जो लोग हैं लेने देने में दोनों जहन्नम में। अकल कहती है हमारी कि नहीं ये तो फायदे की, इसलिए अकल बहुत बड़ी नेमत है, इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन असल में यार हमारी अपनी अकल नहीं, असल में यार उस जात आली की बात है जिस जात आली ने इंसानों को सूझ बूझ की सलाहियत से सरफराज किया। इसीलिए कहते हैं कि पहली जो कुव्वत है किसी बात को समझने की, किसी बात को जानने की, किसी चीज की फहम की जो कुव्वत है उसे कुव्वत इल्मिया भी कहते हैं, उसे कुव्वत अक्लिया भी कहते हैं। ये तीन कुव्वतें, कुव्वत अक्लिया या इल्मिया, कुव्वत मजहबिया, कुव्वत शरईया। कुव्वत मजहबिया और कुव्वत शहरिया मुताबिक होती है कुव्वत अकलिया के फैसले पर, और अगर कुव्वत अकलिया को ताबे इल्म हक न किया जाए तो परवरदिगार आलम के इल्म के अगर इस अक्ल को ताबे न बनाया जाए तो फिर ऐसी सूरत में फवायद या मजर्रत का तायुन करने में बहुत बड़ी गलती लोग सारे बिगाड़ की बुनियाद ये है। इसीलिए कहते हैं कि अपने इल्म को इल्म हक के ताबे बनाए, अपने अक्ल को शरीयत मुतहरा के ताबे बनाए। वो जिस चीज को फायदे वाली कहे वो है फायदे, और वो जिस चीज को नुकसान वाली कहे वो है नुकसान। अगर ये एक मसला हल हो जाता है माहौल में, मुआशरे में, लोगों में, मर्दों में, औरतों में, फिर इंशाल्लाह वो अजीज जो भी इकदाम हम करते हैं किसी चीज के हासिल करने के, या भी जो भी इकदाम हम करते हैं किसी चीज से बचने के, वो सही रुख पर होंगी। पूरी तरबियत की बुनियाद इसी के ऊपर है, समझ लीजिए पूरे इस्लाम की बुनियाद इसी के ऊपर है। और ये फवाइद और ये जो नुकसान हैं ये भी दो तरह के हैं, एक मादी लाइन के फवाइद और नुकसान, और दूसरे गैर मादी जीवन के फवाइद और नुकसान। समझ में आ गया, ये करूंगा तो मुझे मकाम मिलेगा, लोग मकाम मर्तबा लोग के दरमियान में शोहरा चर्चा, लोगों के दरमियान में इज्जत हैसियत, जरूरी चीज तो है नहीं मानी। अब उसके वास्ते आदमी क्या क्या कर गुजरता है, कुछ मत पूछिए कि मुझे मकाम मिल जाए उसके वास्ते इकदाम कर रहा है। समझा कि मकाम मिलने से फायदा है, वही समझा कि मकाम कटने से नुकसान है। और यही वजह है कि बाद लोगों को आज तक वो चीज पूरी तरीके से समझ में नहीं आती जो 100% नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों पर एतकाद में थोड़ा सा तामुल करते रहते हैं, बावजूद पैगंबर बरहक होने के, बावजूद ताईद इलाही के हासिल होने के, बावजूद हक पर होने के, फिर उन्होंने हुदैबिया के मौके पर कायम को मुसालाह कर ली काफिरों से, वो भी एक तरफा। हत्ता कि जब तक के खतीब फैसला नहीं हुआ था, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन में सवाल भी आया, उन्होंने पूछ भी डाला कि हम लोग हक पर नहीं, उसके बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफा मुसालाहत की। मंशा इलाही है ये थी, तो जाहिर अकल उसको आसानी से मकबूल नहीं करती। 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में सताए जाते रहे, अजियतें पहुंचाए जाते रहे, तकलीफें दिए जाते रहे, बाइकाट किया जाता रहा, तंग किया जाता रहा, तिहाई गुस्ताखाना नारवा सुलूक जारी रहा। हालांकि पहले दिन से 100% हक पर, जैसे हमारा हाल है 2-4% हक पर है, बाकी बड़ा हिस्सा ना हक पे चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है इस वास्ते के अपन लोगों जायजा ही नहीं ले रहे अपने हवा, वहां से बने करना है अपना। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे में क्या कमी रह गई, खाली ऊपर का कलर देख ले रहे, सेब का देखने में पूरा सेब महफूज है कि सुराखा नहीं, दाना नहीं है, कलर में कोई खराबी नहीं है, ऊपर की चीज में कहीं शिकन नहीं है, उसमें बिछाया हुआ पन नहीं है, चमक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। बल्कि लेके जा रहे हैं अंदर जाके घर में ले आके काटे तो पूरा खड़ा हुआ। आप लोगों को भी ऐसा सेब मिला नहीं मिला पता नहीं, मिला बल्कि बोलना होगा आप लोग नहीं मिला, पूरा जायजा लेना जरूरी। बच्चों को देखने के वास्ते जा रहे हैं, बच्चियों को देखने के वास्ते जा रहे हैं, खाली फेस देख के निकलना है कर रही तो सुना चेहरे का कलर देख के इतमान नहीं कर रहे, बिजलियों का कलर देख रहे हैं तो कैसा है। खड़ा कर करके एक को नहीं, कई कई मरतबा खड़ा कर करके देख रहे कब कितना है, ओढ़ने हटने के बालों की दराजी देख रहे कितनी है, बातें करके हंसा के देख रहे दातन कैसे है, चला के देख रहे सीधे कदम डाल के जा रही है, अदला टेढ़ा बेड़ा चलती है, उंगलियों पकड़ के देख रहे सब बराबर है कि नहीं। आगे कभी कभी लोग सोया तो शायद वो स्केल और टेपा ले आके देखते हैं क्या है कि नाप नाप के कानों का दायरा कितना है, गर्दन की दराजी कितनी है, सर का घेरा कितना है। हाल एक चीज देख के मुतमिन हो जा रहे, जी बात है एक इस्लामी ऐसा रह गया कि खाली एक आध चीज इस्लामी देखने के मुतमिन हो जा रहे, पूरा दीन है मेरे पास आइए जब हम जायजा लेंगे तो पता चलेगा दीन का एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी अपनी जिंदगियों से निकल गई और वो जो छोटा सा हिस्सा रह गया है जिसके नतीजे में ये लोगों में तासुर कायम होता है कि ये दीन पसंद है, जब उसके दीगर शोबाजात में इंतहाई खराबी देखते हैं तो लोग दीनदारों से फिर मुतासर होना शुरू हो गए। ऐसा नहीं कि मैं खाली एक अंदाजा आपको दे रहा हूँ, आपको दसियों शिकायतें पहुंच चुकी है बोलिया बुशरा देख के, उनका जाहिरी दीन देख के, उनके बाद आमाल दीन की बुनियाद पर हम यही समझे कि ये पूरा दीन और शरीयत का पाबंद शख्स है, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये मामलात में ऐसा है, ये मुआशरत में ऐसा है, ये अखलाक में ऐसा है, ये घरेलू जिंदगी में ऐसा है। इस वास्ते तय कर लिए कि हम किसी ऐसी शक्ल सूरत वाले के साथ रब्ता नहीं रखना। दसियों लोगों ने इस जुर्म की बात की, हमने इस्लाम को लोगों को अपने से करीब और इस्लाम के करीब करने के बजाय दूर करने का हम सब को जरिया बन। जायजा लें तो पता चलेगा जिंदगी के बेशतर वो हिस्से हैं जिसमें हमने अपनी अकल अपनी फहम को मेयार बनाया कुरान और सुन्नत की तालीम के मुकाबले। इसीलिए एक उसूली उमूमी कायदे कुलिया की हैसियत की बात आपके सामने ये अर्ज की जा रही है। तलबा तालिबात भी जहन में रखे इसे कि एक है तबीयत और एक है शरीयत। तबीयत किसी चीज की तरफ माइल हो तो जरा पूछ लो कि शरीयत क्या है। हमारी तबीयत और हमारी फहमो फिरासत और हमारी अकल किसी चीज को चाह रही हो तो ये ऐसे हो कि ये चीज चाहने की है या नहीं, की इजाजत है या नहीं, इसको हासिल करने की मेरे अंदर जो ख्वाहिश और चाहत है उसकी इस्लाम में इजाजत है या नहीं ये मालूम। अगर ये भी इजाजत दे दे तो आप अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा कीजिए कि मेरे अंदर ऐसी ही चीज का तकाजा हुआ जिसकी शरीयत ने इजाजत दी। सलामती तबीयत पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और अगर ऐसा हो कि तुम्हें एक चीज चाह रही शरीयत से पूछा तो शरीयत इजाजत नहीं दे रही तो ऐसी सूरत में परवरदिगार आलम से गुजारिश कीजिए कि मौला मेरी तबीयत भी ऐसी ही बना दीजिए, तो मुझे अक्ल में ऐसा कमाल भी अता फरमा दीजिए कि आपकी पूरी बात अभी मेरे दिल दिमाग में उतरी नहीं है। परवरदिगार मुझे ऐसी दौलत से सरफराज फरमा दीजिए कि आप ही की बात और आप ही की तालीम और आप ही की हिदायत हाथ है और जो मेरे अंदर तकाजा है ये तकाजा सही नहीं है, ये फहम काबिल मुझे अता फरमा दीजिए। और ये समझ लीजिए कि जो कुछ मुझे अब तक समझ में आ रहा है वो ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। तो शरीयत से ज्यादा समझदारी की बात किसकी हो सकती, लेकिन जब तक ऐसी अकल हासिल ना हो क्या करना, उसके वास्ते भी कायदा याद रख लीजिए कि अगर तबीयत किसी चीज का तकाजा करती है और शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती तो यही वो मकाम और महल है जिसमें हमको अपने उस तकाजे के खिलाफ करना है, जिसकी तर्जुमानी कुरान पाक में इन अल्फाज में की गई नहा नफ्सा अनिल हवा, नफ्स को ख्वाहिश से रोक इसके खिलाफ करना। एक मरतबा करेंगे, दो मरतबा करेंगे, तीन मरतबा करेंगे, दस मरतबा करेंगे, बीस मरतबा करेंगे, तब कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत उससे मानूस हो चुकी है। परवरदिगार आलम जब ये देखेंगे कि मेरे दीन की अजमत इसके दिल में ज्यादा है, मेरे अहकाम की अहमियत इसके पास में ज्यादा है और ये अपनी अक्ल फहम के मुकाबले में मेरे इल्म के दावे अपने आप को रखता है, मुझे आदत है कि फिर परवरदिगार आलम अक्ल फहम में ऐसा कमाल और ऐसी खसूसियत अदा फरमा दे फिर हर हर चीज का इंतहाई माकूल होना भी समझ में आना शुरू हो। दरअसल यही वो मजामीन थे जिसके खुलने के नतीजे में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगह जिसमें उन्होंने इस्लामी अहकाम की इंतहाई माकूल तशरीह करने की कोशिश। ऐसे ही हमारे बाद अकाबिर में किताब लिखी गई अहकाम इस्लाम अक्ल की नज़र, उन्होंने बताया कि बाकुलियत इसमें इस वजह से वो नहीं समझ में आने की वजह से लोगों को इस्लाम पर एतराज होता है, इस्लामियात पर एतराज होता है, ये अकाम ऐसे कैसे, वो अकाम ऐसे कैसे, नहीं समझ में आने की वजह से। और ज्यादातर एतराज की बुनियाद कम इल्मी या ला इल्मी और जहालत हो, उसको पूरा इल्म होता है उसको किसी चीज पर एतराज नहीं हो, कम इल्मी की वजह से होते हैं। عورت کا حصہ کم ہے میراث میں, مرد کا حصہ بھی ادا ہے تو اعتراض ہو گیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ حالانکہ عقل بھی ہوں گے جی, وہ کمزور ہے, اس کی مدد زیادہ کرنا چاہیے, ادھر دور کر سکتا ہے, کروا سکتا ہے, اسی صورت میں ان کا حصہ کم کرنا چاہیے. چلو ایسا نہیں کرے تو کم از کم برابر تو رکھنا چاہیے ایسی عقل کے. لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں لذت کری مثل حاصل ان سے, یہ مرد کے واسطے عورت کے مقابلے میں دو رائز. کیوں؟ اس واسطے کی جس عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس عورت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے, اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے, اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. اس کے ذمہ تو کمانا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے, جب بھی وہ کسی نہ کسی کی نگرانی میں ہے, کسی نہ کسی کی ماتا ہے, ظاہر ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں اس کے لیے عورت کا زیادہ بندوبست کیا جانا چاہیے. ورنہ کچھ بھی نہ ملے حصہ, تب بھی بہنوں کا خیال رکھنا بھائی کی ذمہ داری. کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اس لیے بس ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ جس کسی چیز کا تقاضا ہوا جاڑے میں, بہترین جاڑے میں نیم مرغا آپ مل جائے گا. رات میں لیٹا تھا اور تلاش کرنے کے بعد جیسا ڈنڈا دیکھا, ڈنڈا دیکھا تو بجائے ڈنڈے پہ ہاتھ پڑنے کے چکنی گول چیز کو پڑا تو اس کو اٹھایا. لوگوں نے دیکھنے کا انداز الگ رہا, دیکھنے کا الگ رہا, اپنے ہاتھ سے دیکھ رہا ہوں ادھر سے رکھے ادھر سے رکھے, اتنا صاف ستھرا بہت کچھ ہو جاتا ہے, کریم تھوڑا آتا ہے, اس کی آنکھ کے لیے میرے نابینا بنتے نہ جائے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ کو اکل تم قبضہ کر لینا چاہ رہے ہیں, میں ایسا رسوس میں آنے والا نہیں. جینا اور ایک نابینا میں دنیا کی فرق ہوتا ہے, ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ ہماری عقل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں اور ایک روزگار عالم, اتنا بڑا فرق ہے. ہمارے بھی ایک بات سمجھ میں آئی شریعت کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا, ہم تو رہ رہے ہیں دونوں دنوں دن گزر رہا ہوں, ہم لوگوں کا نہیں کرتے لوگوں کو سمجھ اس لیے آؤٹ آف ڈیٹ لگ رہا ہے, کیا معلوم کہ دنیا کی طرف سے کدھر ہوگی. زمانے کا ساتھ دینا چاہیے, جیسے حالات ہوں ویسے احکام ہوتے ہیں. نکلو باہر, باہر نکلو ذرا دیکھو دنیا کی طرف تھوڑا جا کے بھائی, اور ایسے ہی رہے گی تو روزانہ کے وقت بھی رہتے رہیں گے. دوسرے دیکھو ایسا کر کے ایسا کر کے جانتے جانتے بھی رات میں وہاں جانے کی کامیابی ہو رہی بھائی, ایک گڑا دور تھا اس کے قریب تک قریب تک چلے گئے وہاں تک پہنچے تو بھائی بھی گڑے کے قریب گئے. اپنی عقل پر بھی آج کل لوگوں نے تمام چیزوں کو موقوف کر دیا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, کیا لینا کیا نہیں لینا, کیا چیز اپنانا کیا چیز نہیں اپنانا, اس پر سارے بگاڑ کی بنیاد یہ. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تین چیزوں کو اعتدال پر لانا تو ہی تربیت صحیح ہو سکتی, تو ہی پھر آدمی آدمی بنتا ہے. آدمی تو معمولی سی چیز نہیں ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے آدمی میں جب نہ ہو آدمی ہی ہے وہ والے آدمی. درندے اتنا زیادہ ایک دوسرے سے اذیت نہیں پا رہے جتنا ایک انسان دوسرے انسان سے اذیت. حیوانات کی دنیا میں آپ دیکھیں گے اپنے ہم جنسوں پر عام طور پر حملہ نہیں کرتے, لیکن انسانوں کو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کی عزت پر آبرو پر جان پر مال پر جائیدادوں پر حملے روز بروز. اسی لیے فرمایا گیا کہ انسانیت اگر کئی رخ پر چلتی ہے اور آدمی میں آدمیت ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ اس قدر اونچے مقام پر پہنچتا ہے کہ فرشتوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ دوسری سمت میں گراوٹ کی طرف جاتا ہے تو پھر جاتے جاتے ایسی سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ جس سطح کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک کل انعام بل هم اضل, تو چوپایوں جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. یہ انسانیت کا ایک انسان ہے, انسان کا انسانوں کے بارے میں سنتے ہیں ये दो सामों की लड़ाई आ जाती है, एक साथ दो काम भी मिल जाते हैं, तो ये हाल हो गई नहीं रहना हो गए नहीं रहना कहीं भी नहीं रहना पूरे जमीन पर नहीं रहना की बुनियाद पर इकदाम करता है, लेकिन ये तकाजा मेरा सही है या गलत है, सही जायज है या नाजायज है, बाकी तो इसमें फायदा है कि नुकसान हो नहीं सकता। बिल्कुल बच्चों जैसा हाल इसे तो नहीं मालूम कौन सी चीज फायदे की कौन सी चीज नुकसान। माँ रोकती है तब भी नहीं रुकता, शराब को पकड़ने के वास्ते जाता है, शोला है उमदा किस्म की उसमें लहरे है, खास किस्म की उसमें चमक है, आगे बढ़ाता है कि उसे पकड़ मारो बाप रोकता है, भाई बहन रोकती रुकता नहीं, उसको पकड़ ले तो रोना शुरू कर देता है, उसको हटा दे तो देखना शुरू कर देता है। समझ में नहीं आ रहा, उसे बस इतना समझ में आ रहा है कि ये अच्छी चीज नदी में बढ़ रहा है। बिल्कुल जैसे वो ना समझ किस्म के बच्चे का हाल है, पराये तो पराये हैं, और लोग तो और लोग हैं जिनका ईमान नहीं है कुरान पर, जिनका ईमान नहीं है अल्लाह की वहदानियत पर, जिनका ईमान नहीं है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, जिनका एतिकाद नहीं है आखिरत पर, जो नहीं मानते हैं कुरान पाक को अल्लाह का कलाम और शरीयत का सहारा, जो तस्लीम नहीं करते हैं, लोगों को नहीं समझने आ रहा है, तो उतनी ज्यादा ताज्जुब खेज बात नहीं थी। मुसीबत आज ये है कि उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझ में नहीं, उनको जो समझ में आया बस वो करते हैं। याद रखना है इस बात को कि अगर हमको एक चीज फायदे की समझ में आई और शरीर सहारा उस फायदे की नहीं गई थी और उसके नतीजे में हम उस चीज को नहीं हासिल किए, दूसरे ने ले लिया, तो अपने को ये जो बात समझ में आती है कि देखो उसमें फायदा हो गया मेरा नुकसान हो गया, समझ लीजिए इस बात को उसका नुकसान हुआ अपन फायदे में रह गए। उसी की तर्जमानी करते हुए कहा गया है कि जो शरीयत मुतहरा के तकाजे अलग हों और नफसानी और तबीयी तकाजे अलग हों, और इन दोनों की जब जंग हो जाए और तबीयी तकाजा हार जाए तो ये हमारी जीत। हार भी गवाना जाता है ना, ये खुशी मुसरत कामयाबी गवाना जाता है, हार अमीर पंजब खाने के माना जाता है, जो होंगे पर मार दिए जाते हैं हार के बाद जो हार है ये हार है क्या कामयाबी है जीत है ना, ये हार समझो आप। अगर शरीयत के मुताबिक शरीयत के तकाजे पर अमल हो गया और तबीयत के तकाजे पर अमल नहीं हुआ, लोगों की निगाहों में इस तकाजे को पूरा नहीं करने की वजह से लोगों ने हमको हारा हुआ समझा, तो लोग समझते रहे हमको हारा हुआ, हम तो जीते हुए समझ होते खासी रकम ले लेके हार जाते आदमी हारता नहीं, जीता हुआ समुद्र से आदमी जीतता नहीं, जीत हार का ताल्लुक इन चीजों से है ही नहीं। जीत हार का ताल्लुक तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी के बना है, अगर हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बनाई तो ये जीत है, और अगर हमने उसके खिलाफ किया तो ये हमारी रोजगार आलम की रिजा जिससे मिल जाए, आखिरत के जरिए से समझ जाए और अंजाम के एतबार से बुरे अंजाम से हम महफूज हो जाए तो ये है कामयाबी। रोजगार आलम ने कुरान पाक में फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिल नार और फिल जन्नत फ़ाज़, जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए बिला शुबा वो कामयाब हुआ। अपने शरीयत पे चलना, अपनी अकल क्या कह रही है वो भी देखना है, कुरान सुन्नत का इल्म क्या कह रहा है वो दे, मेरा मंशा क्या है वो नहीं देखना है, अल्लाह रसूल का मंशा क्या है वो दे, जिंदगी गुजारो ये बात लाने का मसला आता है। क्या शादी करा, क्या क्या शादी करा के मिले, इतने दिन लोगों के जुबानों से, लोगों की जुबानों से अभी ये सुनने नहीं होते कि क्या शादी करा और वहां सूरत हाजिरी करोगे, सबके मातम बिछी सबके सब असल जिनसे अपना राबता है, असल जिनसे अपना ताल्लुक है, असल जिनसे अपना मामला है, उनके साथ में हमारा ताल्लुक सही हो ये दुनिया दोनों असल हैं, उन दोनों में आपस में नाराजगी ऐसी सूरत बताई कि खानदान वाले रिश्तेदार दूर के करीब के है इनके लिए अहमियत है, लेकिन बुनियादी हैसियत तो उनकी शरण है, सब कुछ रहे वो दोनों नाराज रहे तो बताइए क्या बात है। ऐसे ही बंदा अल्लाह नाराज, बंदा बंदे से अल्लाह नाराज रहे तो मेरी सूरत में उस बंदे से पूरी दुनिया भी राजी है, क्या बात है। और आप बुजुर्गों ने लिखा है कि भाई ये जो तुम्हारी जानवा है और ये जो तुम्हारी साफ है इसको इंतजार पर लाने के लिए जरूरत पड़ती है किताबें बनाया जाए मुझे इल्मिया अकलिया के यानी इल्म शरीयत जहाँ कहीं भी टकराव पैदा हो जाए इल्म हक से इन तकाजों का, तो ऐसी सूरत में इल्म हक के दावे रहे और इन तकाजों को दबा इंशाल्लाह पूरी जिंदगी के हर शोबे में सुधार और सलाह और दुरुस्ती का ये नुस्खा सबब और जरिया बन। बस आज तो इतना ही सबक, सारा अपने तरफ से सही माहौल।